ओम शांति। तो आज हम सभी के बीच राज्यों के सुभाष भाई जी का विशेष प्रश्नोत्तर के रूप में क्लास रखा गया है। तो सबसे पहले हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। सुभाष भाई जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ मैं आपको देती हूँ। 28 साल से वो यज्ञ में समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं और ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल के इंचार्ज है। आज उनसे विशेष हम जो उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी तो उसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त की उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमें भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं सुभाष भाई जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना थोड़ा सा परिचय कि वो कब ज्ञान में आए और मधुबन में कैसे आए वो 5 मिनट में सुनाएंगे।
ओम शांति। आज बहुत खुशी हो रही है, आप सबका समीप से दर्शन करने को मिल रहा है। मुझे याद है सबसे पहले मैं 1983 में यहाँ आया था और पहली बार में ही आया और पहली बार ही सेवा का चांस मिला। और सेवा क्या मिली, पहले तो सब बहुत छोटा था इसलिए पहले तो सेवा में कोई रखता ही नहीं था, सब नाना बोलते थे। और फिर अचानक एक बड़ा ग्रुप आया मधुबन में, तो मुझे याद है तो संतोष बहन थी बॉम्बे की और प्रभा बहन थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये छोटा है ना सबको पानी बांटेगा, तो एक मुझे जग दिया गया और सबको पानी बांटने की सेवा मिली थी सबसे पहले। लेकिन तब से मेरे दिल में रहा कि मुझे कुछ करना है, बाबा की सेवा करनी है। और मैं पढ़ाई करता रहा और हर छुट्टी में ही आता रहा और धीरे धीरे करके 1986 में भोली दादी ने मुझे खास प्रेरणा दी और भोली दादी ने ही प्रकाशपति दादी को बोल दिया कि मुझे तो चाहिए ये, मुझे जरूरत है। तो 1986 की जो रक्षाबंधन का दिन था और वो स्टेज पे ही दादी ने मुझे हाथ में हाथ मिलाया और मुझे ग्रीन सिग्नल दी कि आज से आपको यहीं रहना है, तो वो मेरा बहुत बड़ा एक महान दिन था। तब से लेके मैं वहाँ रोटी डिपार्टमेंट और अलग अलग सेवा करते हुए जैसे ज्ञान सरोवर बन गया, तो मैं यहाँ डाइनिंग विभाग की सेवा के लिए निमित्त बाबा ने बनाया, तब से वहीं हूँ।
जब आपको ये पता चला कि कैंसर की बीमारी आपको हुई, सबसे पहली बात तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको कैंसर हुआ है?
मुझे याद है कि यहाँ मैं 2008 में दिसंबर का मास था, दिसंबर, और यहाँ रामदेव बाबा आए थे इसी स्टेज पे, वो प्राणायाम सिखाया उन्होंने सभी को, जो अमृत वेला जानकी दादी ने योग कराया और उसके बाद रामदेव बाबा यहाँ नीचे बैठ के योग कर रहे थे। और उन्होंने क्या रामदेव बाबा हो और योग न हो ऐसे हो नहीं सकता है, तो आए और सभी को रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि कम से कम 15 से 20 मिनट आप प्राणायाम जरूर करना, और 4-5 प्राणायाम सिखाए और सभी। तब से मैं ही शुरू किया। करीब 2 मास के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ हार्ड हार्ड कुछ गांठ जैसी लग रही है, तो क्योंकि वो प्राणायाम से जो बड़ी गांठ होगी वो छोटी हुई होगी, तो थोड़ा हार्ड होने लगी थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने तुरंत सोनोग्राफी, और तब से मतलब आगे आगे स्टेप बढ़ती गई। डॉक्टर मेहता जी यहाँ आए थे तो उनको दिखाया, तो उनको थोड़ा डाउट आया, तो उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन करो, और तुरंत ही उन्होंने कहा कि तुम बॉम्बे चलो मेरे साथ ही, और मैं तुरंत दूसरे दिन बॉम्बे चला गया। अभी ये सिलसिला शुरू ही था कि अभी तो कंफर्मेशन नहीं था कि क्या है करके, लेकिन वहाँ जो बायोप्सी होगी मतलब उसके अंदर एक सुई डालते हैं और उसमें से वो मटेरियल निकालते वो गांठ का और वो चेकअप के लिए भेजते हैं। जैसे चेकअप का रिपोर्ट आया तो मैं जस्ट लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, तो उस समय जैसे पता चला कि आपको कैंसर है, तो मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया एकदम। मैं एक मिनट के अंदर जैसे कि बाबा के साथ जैसे बात करने लगा कि बाबा ये आपका शरीर है, अगर आपको यहाँ रखना है तो भी अच्छा है, और नहीं रखना है आपके साथ लेके जाना है वो भी मेरे लिए अच्छा है। और बस ये थॉट्स किया और मैं एक मिनट के अंदर जैसे पहले था ना वैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए वैसे न वैसे, और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर मेहता को पता चला, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कल से केमोथेरेपी शुरू करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो जस्ट जो पहला जो एक मिनट जैसे हिला दिया था हमको, लेकिन जैसे बाबा के साथ कनेक्ट हो गया वो धीरे 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 एकदम नॉर्मल हो गया। और उसके बाद मैंने थॉट्स किया कि ये जो है एक एग्जाम है, मुझे इसको पास करना है। छोटी मोटी एग्जाम तो आते लेकिन ये बड़ी है तो और अच्छी तरह से पास होंगे। तो मैं सबसे पहले सोचा कि मैं ये किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले बड़ी बीमारी होती है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वो बीमारी और बढ़ जाती है। तो मैंने ये बीमारी किसी को, डॉक्टर को पता था और मेरे साथ एक भाई था मेरा, बहन का लड़का संतोष करके, वो उसको पता था, तीनों को मैंने बोला किसी को बताना नहीं। और ट्रीटमेंट शुरू हो गई। दो कीमोथेरेपी के बाद लोगों को धीरे धीरे पता चला कि कैंसर है कैंसर है, तो लोगों के फोन आने लगे, फोन आने लगे तो मैंने उनको जवाब देना शुरू किया। तो ऐसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते ना, मैं आपको कैंसर हुआ, आपको तबीयत ठीक नहीं, क्या बोला किसने कहा, मैं बोलता किसने कहा, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं, जबकि मैं बेड पे लेटा होता है उठ भी नहीं सकता है कुछ भी नहीं, लोग तो भी मैं एकदम हौसले से बोलता था मैं तो बिल्कुल ठीक हूं मुझे कुछ हुआ नहीं। तो उनको थोड़ा डाउट होता था सचमुच बीमार है या नहीं है करके। तो परिवार वालों का पता चला तो वो तो रोना शुरू किया, आप ऐसा हुआ है वैसा, मैंने किसने बोला कुछ भी नहीं है मुझे तो, नहीं आपको हम मिलने के लिए आते हैं, मैंने किस लिए, मैं आने वाला आपको मिलने के लिए। तो हैरान हो जाते थे सचमुच क्या है, गलत मैसेज मिल गया ऐसे करके। तो सबके अंदर एक वाइब्रेशन क्या फैल गया कि सुभाष ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। और मैं उनको फिर चुटकुले सुनाता था, अच्छी अच्छी बातें सुनाता, ज्ञान सुनाता था, तो लोग एकदम नॉर्मल हो गए कि हाँ नहीं ठीक है करके। तो यहां से मेरी शुरुआत होगी। और फिर मैंने ये भी पक्का किया कि इस बीमारी से मुझे कुछ ना कुछ फायदा लेना है। अब बताओ क्या फायदा ले सकते।
इस बीमारी के समय विशेष बाप दादा की आपको क्या मदद मिली, और साथ ही आपके सेवा साथी और दादियों से आपको कैसे पालना मिली, उनसे आपको क्या मदद मिली?
देखो सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण परिवार की जो दुआएं है वो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है मैं करीब पांचवीं कीमोथेरेपी चल के बाद में रूम में आया था, और रूम में बैठा था, और उसी दिन बाबा शांतिवन में डायमंड हॉल में आए थे। तो एफएम के थ्रू वो जो गीत है वो बज रहे थे, पदरामने के गीत, बाबा आ रहे, फिर बाबा आ रहे, दृष्टि दे रहे, और जस्ट बाबा की मुरली शुरू हो रही है। तो इतने में मुझे ऐसा फील हो गया कि देखो वहां हजारों लोग बैठे और मैं अकेला यहां बैठा हूं, और मेरे आंखों से है ना पानी आने लगा, एकदम दिल भर आया। तो इतने में जैसे मुरली शुरू होती है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हमारे कमरे में एक ट्रांसलेट है, तो ट्रांसलेट से बाबा ऐसे निकल के मेरे सामने बैठे इधर, और पूरा सवा घंटा जो मुरली चलती है ना पूरी की पूरी बाबा ने मुझे सुनाई, और मैं तो सब कुछ भूल गया और बाबा, और इतना खुशी कि जिंदगी में पहली बार ऐसे अनुभव कि बाबा खुद मुझे मुरली सुना रहे। तो मुझे याद आया कि जैसे भक्ति मार्ग में हम सुनते थे वो चक्की पीसने में आटा पीसने में मदद करता है परमा वो कृष्ण श्री कृष्ण, कोई लकड़ी तोड़ने में, कोई मटके बनाने में। तो मैंने फील किया कि अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा को बुलाते तो हमें वो हाजिरी रहता है अपने सामने। तो ये जो बाबा के लिए जो सच्चे दिल के जो पुकार थे ना कि बाबा मुझे, मैं मुरली नहीं सुन सकता हूं, ये तो बाबा खुद आके मुरली सुनाई। दूसरी बात है कि दादियों के साथ जो प्यार मिला, पालना मिली, वो बहुत वंडरफुल। जब मेरे को ये सेकंड कीमोथेरेपी के बाद में जानकी दादी को मिलने गया था, तो जानकी दादी खुद उठ के मेरे साथ गुलजार दादी के तक आई और गुलजार दादी को बोला, देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया। तो गुलजार दादी बोला कि ये कुछ नहीं, ये तो छोटा सा पेपर है, ये तो ऐसे ही पास कर देगा। तो ये चीज है ना, ये मेरे को बहुत बड़ा जैसे वरदान मिल गया। दूसरी बात, जब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में था, अपने अंधेरी में जो हॉस्पिटल है, तो उस समय क्या गुलजार दादी वहां आए थे बॉम्बे में, और वो हॉस्पिटल में कुछ चीज था, मतलब अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन किया और चली गई। जब वहां जाने के बाद नेपेंसी रोड में गए तो आनंद भाई साथ में था, तो आनंद भाई ने बोला कि आप सुभाष भाई को मिले दादी? तो बोला कहाँ है सुभाष? बोला हॉस्पिटल। तो फिर फोन लगा के दिया कि दादी कैसे ऐसे। तो दादी ने मेरे साथ बात किया, तो दादी ने जो बात किया मैं तो हैरान हो गया, इतनी बड़ी हस्ती और इनके अंदर इतनी निर्माणता, इतना प्यार। तो दादी बोलती, देखो ना मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा दादी आपसे क्या गलती हो सकती? नहीं ना, मैं वहां हॉस्पिटल में आई और आपको नहीं मिली, तो मेरी सी तो गलती हो गई ना। नहीं दादी, आपने मुझे फोन किया ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दादी ने कहा, देखो आपको जल्दी जल्दी ठीक होना है और जल्दी जल्दी मधुबन पहुंचना है। और सचमुच वो जो दादी का जो जैसे आवेक्त रूप, जैसे ना बाबा आवेक्त रूप में, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि जैसे कि बाबा मेरे सामने, बाबा मेरे को वरदान दे रहा है, इतना ब्लेसिंग दे रहा है, और जैसे आंसू आ रहे आंखों से कि दादी का फोन आया, इतनी बड़ी हस्ती। तो ये बहुत बड़े ऐसे दादियों के अनुभव। और बीच बीच में फिर हमारे जो मधुबन निवासी, जो ज्ञान सरोवर निवासी है, उनका तो 9 से 10 फिक्स रहता था, पूरे कमरे में पूरा एक जैसे ना पिकनिक पार्टी जैसे होती थी, कोई कुछ ला रहा है, कुछ कुछ चुटकुला सुना रहा है कुछ, तो 9 से सब अपना कारोबार पूरा करते थे, 9 से 10 कमरे में आते थे। तो इतना मतलब ऐसा लगता था कि बीमारी कुछ है ही नहीं, जस्ट बाबा जैसे मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। और मैंने इसके बीच में बहुत एक चीज की, वो मना कि मेरा पूरा समय सफल कैसे हो, क्योंकि बीमारी समय तो कुछ करना तो होता नहीं, कमरे में बैठना है। तो मैंने एक पक्का किया कि इसको सफल कैसे करना है, तो पूरे दिनचर्या बनाए। सबसे मैंने पहले सोचता था कि जगदीश भाई ने जितना भी लिटरेचर लिखा है वो मुझे पढ़ना है, तो बहुत सारा लिटरेचर में पढ़ लिया। दूसरा, जो भी आवेगतवानी है वो कंप्यूटर में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर एक तीसरी चीज, वो एक महाभारत चल रहा था उस समय, तो मैंने कहा वो महाभारत भी धीरे 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 वो भी देख रहा था। तो जैसे सुबह से शाम तक मेरा समय ऐसा कैसे निकल जाता था मुझे पता नहीं चलता था। तो इस बीमारी से भी मैंने खूब, और उसी समय फिर मैंने वो आर्टिकल लिखना भी शुरू किया। तो आर्टिकल भी बहुत सारे, हिंदी में, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, इसमें सब में आर्टिकल भी आए। तो ये मैंने बीमारी से भी ये फायदा उठाया।
कैंसर के समय विशेष कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट चलता है, उस समय जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ के समय आपकी मन की स्थिति कैसी थी और बाबा की मदद आपको कैसे मिल रही थी?
पहला जो कीमोथेरेपी हुआ तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सलाइन होता है ना उसी में वो दवाई डालते। दूसरा भी होगा तो भी, क्योंकि शरीर में ताकत थी थोड़ा, उसको ये कर सकते थे, हिम्मत थी। लेकिन तीसरी कीमोथेरेपी के बाद मुझे ऐसे खुजली होने लगी, ऐसे देखा तो ऐसे बाल उठा तो बाल ही खींच के इतना सारा गुच्छा हाथ में आया, मैंने कि ये क्या हो गया। तो मुझे लगा यार ये है जो अभी इसकी मतलब शुरुआत हो गई है। तो फिर तो बाल सारे निकाल दे, तो 1-1.5 साल तक फिर हमने बाल कभी देखा ही नहीं हमारे शरीर पे, उसको भी एंजॉय करता था, हमने कहा क्या है अच्छा है ना। तो एक तो ये जो कीमोथेरेपी होती है ना, उसमें इतना शरीर मतलब वीकनेस होता है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो अच्छी जो पेशी होती है, WBC होती है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो कीमोथेरेपी के बाद जब लेटने के बाद उठ भी नहीं सकता था खुद में, हमारा भाई तुलसी भाई साथ में होता था, वो मेरे को उठाता था, बोलता था वॉक करो, ये करो। तो मुझे तो ऐसा लगे मुझे अभी उठना है, ऐसे सोचना पड़ता था अभी उठना है मुझे, और कभी बाथरूम में जाना है तो भी सोचना पड़ता अभी इतना दूर जाना है, जबकि 10 कदम भी नहीं होता, मतलब खटे से उठो बाथरूम होता था तो वहां तक जाना है मुझे, ऐसे सोच पड़ता था कि एक एक कदम मुझे उठाना है वहां जाना है, तो इतना वीकनेस होता है इसमें। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं बेड पे पड़ा रहता था तो मैं ड्रिल का अभ्यास बहुत किया, क्योंकि मैं उठ भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, अभी क्या करूं, तो मैंने ये अच्छा है तो यहां से परमधाम जाना, बाबा को टच करना, फिर वापिस आना, फिर ऊपर जाना, फिर तो एक एक ऐसा जाके एक एक शक्ति लेता था बाबा से, अलग अलग शक्तियां लेता था। तो दर्द तो होता था लेकिन बताता नहीं था किसी को, क्योंकि मुझे पता है बताने से फिर वो दूसरे को बताएगा, वो दूसरे तो वातावरण खराब हो जाएगा, तो सहन करके अंदर ही अंदर ये करता। दूसरा जो हम भोजन करते थे तो उसका इतना हिट होती थी तो पेट में जैसे स्टोन बन जाता, पत्थर बन जाता था, तो जब बाथरूम जाते थे तो वो बहुत तकलीफ हो जाती थी उसमें भी। लेकिन मैंने देखा कि मुझे इसको फेस करना है और बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा मददगार है, और बाबा के साथ रो रियान बहुत करता था, कभी कभी मैं बाबा से रो रियान करता था, देखो बाबा मुझे 25 साल वो समय लो 25 साल हो गए है और इतनी सेवा भी हो गई है, जैसे आर्मी में होते तो रिटायरमेंट भी हो जाता है, तो मैं तो अभी खुश हूं, मुझे अभी आप, क्योंकि यहां रहने से अगर मेरे शरीर से सेवा नहीं होती तो मुझे क्यों रखता है इधर, मेरे को लेके चलो। तो बाबा से ऐसे मैं बात करता था, तो कभी कभी बाबा के जवाब आते थे कि बाबा से भी तुम बहुत होशियार हो गए हो, मुझे सिखाने लगे हो क्या, मुझे पता है क्या करना है। तो मुझे तो हैरान होता था कि जैसे बाबा जैसे रेस्पॉन्स देते थे ऐसे। तो इस प्रकार से धीरे 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 करके पहले 6 केमोथेरेपी हो गई, तो कई बार तो यहां होते थे तो यहां से हॉस्पिटल जाते थे, कभी डायरिया होता था तो डायरिया के बाद एक बार मैं हॉस्पिटल गए थे यहाँ, तो हमारा भतीजा था विट्ठल भाई, उसको फोन किया, वो आया लेके गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मैं वहां बेहोश हो गया, वहां तक तो गया लेकिन वहां बेहोश हो गया, मेरे को दूसरे दिन सुबह पता चला कि मैं कहां हूं करके। तो उसी समय मैंने देखा जब भी मुझे बहुत जरूरी होता था, बहुत आवश्यकता होती थी, उस समय डॉक्टर अशोक मेहता यहीं कहीं होते थे, तो उन्होंने तुरंत मुझे इमरजेंसी में ये भर्ती कर दिया उधर, और फिर उधर बाहर पर्ची लगा दिया कि इसको कोई भी नहीं मिल सकता है पेशेंट ये, क्योंकि उसके जो जर्म्स आते हैं ना उसको जा सकते एक दूसरे को, तो उसको तकलीफ दे सकते पेशेंट को, तो और डॉक्टर भी है ना सब पट्टियां बांध के आते थे, जो भी मिलने जाते थे ना, किसी को मिलना भी है ना वो सारी पट्टियां बांध के फिर हाथ भी धो के फिर मिलने आते थे। तो मैं सोचता था ये क्या हो रहा है सारा ड्रामा इतना सारा, लेकिन मैंने अपने आप को खुश करना, खुश रखना और मनन चिंतन करना ये अपना चालू रहता था, और कभी भी दुख दर्द किसी को बताने का, डॉक्टर को भी डॉक्टर बोला बहुत अच्छा, क्योंकि हमें पता है इसमें ये तकलीफ होती है तो क्यों बताने का किसी को। तो इस प्रकार से ये केमोथेरेपी के समय बहुत सारी चीजें होती थी
बीमारी के समय। अभी जैसे आपने जो भी सुनाया उसमें तो बहुत सारी बातें सीखने को मिली, लेकिन विशेष संदेश कि जब भी कोई बीमारी आती है हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी हुई है, तो 2 लाइन में हमें किस प्रकार अपने मन की स्थिति को अचर अड़ोल रख करके बाबा के ऊपर विश्वास रखना है, वो आप 2 लाइन में संदेश देंगे तो बहुत अच्छा होगा।
उसमें सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा बनाया, इसके लिए सबसे उठते ही पहले उसको थैंक यू देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्यों, जब मैं बीमार के समय मैंने देखा कि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा बनाया, उसका तो हम कुछ यूज ही नहीं करते हैं। अमेरिका में ये शरीर के ऊपर रिसर्च हुआ, उसका कीमत है 220 करोड़, कितना 220 करोड़ इस बॉडी का एक एक ऑर्गन्स अगर अगर बेच दिया है ना, आँख कान ये सब, तो 220 करोड़ होता है। अगर किसी के पास 5-6 लाख की कार भी होती तो 3 बार 4 बार तो उसको साफ करेगा, इतना तेल पानी ये सब। तो क्या हम अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं? अगर हम शरीर अच्छा रखेंगे तो हम इससे सेवा ले सकते। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिनचर्या में ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ ज्ञान योग ही नहीं, हमारे शरीर के लिए एक तो प्राणायाम भी करो, वॉकिंग करो, थिंकिंग अच्छी अच्छी करो, और सबसे बड़ी बात सबके लिए अच्छा सोचो। कैसा भी कोई हो अच्छा सोचो उसके लिए, क्यों? अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए रिफ्लेक्शन में अच्छा ही सोचता है। जैसे छोटी सी बात है, अगर आपके घर में कोई आता है और उसको हम चाय पानी पिलाते हैं, सब कुछ खुश हो जाता है, तो चला जाता है मेहमान, फिर कुछ 5-6 मास या 1-2 मास के बाद वो उसी रास्ते से कहीं जा रहा होगा ना, तो भी वो आपके तरफ आएगा, हाँ कैसे भैया ठीक है क्या? क्यों आएगा? उसको पता है ये रिस्पेक्ट देते है, प्यार देते है। तो हमें भी ये चीज सीखना चाहिए कि अगर हम किसी के लिए रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, तो हमें भी वो रिस्पेक्ट प्यार देंगे। और किसी की सफलताओं के ऊपर अगर हमें खुशी होती, आनंद होता है कि अगर सामने वालों को समझो पद उन्नति हो गई, कोई अच्छी चीज उसको मिल गई, उसको कार मिली, तो उसको देखिए खुश होना चाहिए, अरे वाह ठीक है कभी हम भी बैठ जाएंगे उसमें, है ना? इस प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये जो सफलता जो है ना, सफलता ये देखती रहती है कि मुझे कौन रिस्पेक्ट करता है, मुझे कौन प्यार करता है, तो एक दिन वो सफलता क्या होती है आपके पास आ जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे हमें जो भी बातें सीखने को मिली, बहुत जैसे बाप दादा हमारे सामने ऐसे प्रेरणादायी भाई बहनों को रखते हैं, तो विशेष जो बात समझने को आई वो ये कि कैसे बीमारी के समय उन्होंने समेटने की शक्ति को भी धारण किया, किसी को ना बताते हुए उस बात को अपने अंदर ही रखा और समा लिया। तो जैसे ये दो शक्तियों का भी उन्होंने अनुभव किया, समेटने की और समाने की, और साथ ही संगठन में चलते हुए हमें सबके साथ कैसे प्रेम से चलना है कि कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, और सहन शक्ति जिसे जानकी दादी जी बताते कि उनकी सबसे अच्छी सखी है सहन शक्ति। तो संगठन में चलते हुए हमें प्रेम और सहन शक्ति को धारण करके चलना है, ये भी उन्होंने अपने आशीर्वचन में हम सबको ये सब बातें सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भाई जी का और बाप दादा का भी कि इतना अच्छा मौका हम सभी को मिला, जो इतने प्रेरणादायी बोल सुनने को मिले। अभी हम सभी सच्चे दिल से बाबा की याद में बैठेंगे, और भाई जी का तो शुक्रिया अदा हमने तालियों के साथ किया ही, दिल से भी करेंगे, और बाबा का भी शुक्रिया करेंगे कि इतना अच्छा अनुभव सुनने का मौका आज हमें ज्ञान सरोवर में मिला। ओम शांति।
सबसे बड़ा थैंक यू आपको कि हम आपके सामने अभी तक है बाबा ने रख दिया इतना अच्छा, और सबसे बड़े बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और निकल वाया अंदर से अच्छी अच्छी बातें। ओम शांति।